Hare Krishna. तो मैं मध्य लीला प्रथम अध्याय तक पाठ किया था. प्रथम अध्याय मतलब मध्य लीला का प्रथम खंड नवम अध्याय तक पाठ किया. तो आज दसम अध्याय से हम जो द्वितीय खंड है मध्य लीला का से शुरू कर रहे हैं. It seems like somebody else wants to give the class today. दसम अध्याय का सार वर्णन ऐसे हुआ है, महाप्रभु का जगन्नाथ पुरी वापस आना. नवम अध्याय में हम क्या विचार किया था, क्या पाठ किया था, दक्षिण भारत यात्रा खत्म हुआ है, पूर्ण हुआ है. अब महाप्रभु जगन्नाथ पुरी वापस आए हैं. जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा प्रताप रुद्र से तमाम बातें की. जब राजा ने भट्टाचार्य से ये प्रार्थना की कि वे महाप्रभु से उसका साक्षात्कार करा दे, तो भट्टाचार्य ने आश्वासन दिया कि दक्षिण भारत से महाप्रभु के लौटते ही वे ऐसा करने की चेष्टा करेंगे. जगन्नाथ पुरी लौटने पर महाप्रभु काशी मिश्र के घर रहे. सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु के वापस आने पर अनेक वैष्णवों का उनसे परिचय कराया. रामानंद राय के पिता भवानंद ने अपने दूसरे पुत्र बानीनाथ पट्टनायक को महाप्रभु की सेवा में भेंट कर दिया. महाप्रभु ने अपने संयोग से भट्टधारियों की संगति के द्वारा कृष्णदास के दूषित होने की बात बतलाई और उसे निकाल देने का प्रस्ताव रखा. नित्यानंद प्रभु ने कृष्णदास को बंगाल भेज दिया, जिससे वो जाकर नवद्वीप के भक्तों को महाप्रभु के जगन्नाथ पुरी वापस आने का समाचार दे. इस तरह नवद्वीप के सारे भक्त जगन्नाथ पुरी आने की व्यवस्था करने लगे. उस समय परमानंद पुरी नवद्वीप में थे. वे अपने साथ कमलकांत नामक एक ब्राह्मण को लेकर तुरंत ही जगन्नाथ पुरी के लिए चल पड़े. नवद्वीप के एक निवासी ने, जिनका नाम पुरुषोत्तम भट्टाचार्य था, वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की थी. उन्होंने चैतन्यानंद से सन्यास ग्रहण किया था, किंतु अपना नाम स्वरूप रखा था. अब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण में आए. श्री ईश्वरपुरी के मृत्यु के बाद उनके शिष्य गोविंद अपने गुरु की आज्ञानुसार चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गया. केशव भारती से संबंध होने के कारण ब्रह्मानंद भारती का भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वागत किया. जगन्नाथ पुरी आने पर महाप्रभु ने उन्हें मृग चर्म न पहनने का परामर्श दिया. जब ब्रह्मानंद ने महाप्रभु को ठीक से समझ लिया तो उन्होंने उन्हें साक्षात कृष्ण के रूप में स्वीकार कर लिया. किंतु जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को कृष्ण कहकर संबोधित किया तो महाप्रभु ने तुरंत प्रतिवाद किया. तभी काशीश्वर गोस्वामी भी महाप्रभु से भेंट करने आए. इस अध्याय में महाप्रभु का दर्शन करने के लिए विभिन्न स्थानों से आने वाले भक्तगण उन नदियों के तुल्य हैं जो उनके स्थानों से बहकर समुद्र में जा मिलती हैं. तं वंदे गौर जलदं स्वस्य जो दर्शनामृतै विच्छेदावग्रह म्लान भक्त शश्यान्न जीवयत. मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जो वर्षा की कमी से कष्ट पा रहे भक्त रूपी धान्य के खेतों में जल बरसाने वाले बादल की तरह हैं। महाप्रभु का वियोग सुखे की तरह है, किंतु जब महाप्रभु लौटते हैं तो उनकी उपस्थिति उस अमृत वर्षा की तरह है जो सूखती हुई शस्य पर गिरकर उसे नष्ट होने से बचा लेती है। ये श्लोक का अर्थ सब समझ गया? महाप्रभु जब चले गए थे तब भक्तगणों का हालत कैसा हुआ था? पानी ना मिलने के कारण शस्यों का जैसे हाल होता है, कैसा होता है? सूख जाता है। वैसा ही उनों का हालत हुआ था। बल्कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु वापस लौट आए तो उनका हालत कैसा हुआ? फिर पानी बरसने से शस्यों का जैसा हाल होता है, सतेज बन जाता है, जीवन वापस आ जाता है और वो उसमें सारे शस्यों का फैल जाता है। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य के समस्त भक्तों को जय हो, समस्त भक्तों की जय हो। जय स्त्रीलिंग वाचक है इसलिए भक्तों की। मैं पहले बताया था हर अध्याय के शुरू में एक संस्कृत श्लोक रहता है। चैतन्य चरितामृत का हर अध्याय का शुरू में एक संस्कृत श्लोक होता है। उस श्लोक का विशेषता क्या होता है? उस एक श्लोक के द्वारा उस अध्याय का विषय का वर्णन होता है। तो इस अध्याय में किसका वर्णन होगा, किस विषय का वर्णन होगा? महाप्रभु के विच्छेद से, महाप्रभु चले जाने से भक्तों का कैसा हाल हुआ था पूरी जगन्नाथपुरी में, और महाप्रभु के वापस लौट आने के बाद उनका हालत कैसा हुआ। पूर्वे जबे महाप्रभु चलिला दक्षिणे, प्रताप रुद्र राजा तबे बोलाइल सार्वभौमे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत चले गए तो राजा प्रताप रुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपने महल में बुलाया। बसिते आसन दिल करि नमस्कारे, महाप्रभुर बार्ता तबे पूछिल ताहारे। जब सार्वभौम भट्टाचार्य राजा से मिले तो राजा ने उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान किया और श्री चैतन्य महाप्रभु की खबर पूछी। सुनिलाम तुमार घरे एक महाशय, गौर हईते आईलाते हो महाकृपामय। राजा ने सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछा, सुना है कि बंगाल से एक महापुरुष आया है जो आपके घर ठहरा था। मैंने ये भी सुना है कि वो अत्यंत कृपालु है। तुम्हारे बहु कृपा कोईला कहे सर्वजन, कृपा करी करा हो मोरे ताहारो दर्शन। मैंने ये भी सुना है कि इस महापुरुष ने आप पर महती कृपा की है। जो भी हो, विभिन्न लोगों से मैं ये सुना था रहा हूं, अब ये ही सुन रहा हूं। अब आप कृपा करके मेरी उनसे मुलाकात करा कर मुझे कृतार्थ करें। भट्ट कहे जे सुनिला सब सत्य है, तार दर्शन तुमार घटन ना है। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, आपने जो कुछ भी सुना है ये सब वो सत्य है, किंतु जहां तक मुलाकात करने की बात है उसका प्रबंध कर पाना अत्यंत कठिन है। विरक्त सन्यासीते हो रहें निर्जने, स्वप्ने हो ना करें ते हो राजदर्शने। श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं और सांसारिक बातों से अत्यधिक विरक्त हैं। वे निर्जन स्थान में ठहरते हैं और सपने में भी किसी राजा से मुलाकात नहीं करते। तथापि प्रकारितमा कराइताम दर्शन संप्रति करिलाते हो दक्षिण गमन। इतने पर भी मैं आपकी मुलाकात का प्रबंध करता, किंतु वे हाल ही में दक्षिण भारत के भ्रमण पर गए हैं। राजा कहे जगन्नाथ छाड़ी कैने गेला, भट्ट कहे महांतरे एई एक लीला। राजा ने पूछा उन्होंने जगन्नाथ पुरी क्यों छोड़ा। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया महापुरुष की लीलाएं ही ऐसी हैं। तीर्थ पवित्र करिते करे तीर्थ भ्रमण, सेई छले निस्तारये सांसारिक जन। बड़े बड़े संत तीर्थ स्थानों को पवित्र बनाने के लिए उनकी यात्रा करते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु अनेक तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं और अनेक अनेक बद्ध जीवों का उद्धार कर रहे हैं। साधारणतया मनुष्य तीर्थ स्थान में क्यों जाते हैं? पवित्र होने के लिए, पुण्य अर्जन करने के लिए। बल्कि भगवान के जो महान भक्त हैं उन्होंने क्यों तीर्थ स्थान पर जाते हैं? तीर्थ को पवित्र करने के लिए। भगवान के भक्त जो अपना हृदय में गदाभृत गोविंद को गोविंदों को रखते हैं, उन्होंने तीर्थ स्थानों में जाकर तीर्थों को पवित्र करता है। तीर्थी कुर्बंती तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृत। तीर्थी कुर्बंती तीर्थानि, जो तीर्थ को भी तीर्थों बनाते हैं, तीर्थ स्थानों को तीर्थ बनाते हैं, वो भगवान के भक्त तीर्थ स्थान में जाकर तीर्थ को पवित्र करते हैं, तीर्थ को तीर्थ बनाते हैं। प्रभुपाद इस विषय में बोले हैं कि सब लोग आकर तीर्थ स्थान में आकर अपना पाप छोड़ के जाते हैं, अपना पाप डालने के लिए तीर्थ स्थान में आते हैं, और भगवान के भक्त क्या करते हैं? वो जो पाप, उस पाप को नाश कर देते हैं। वैसे तीर्थ स्थान में भक्त लोग जाते हैं पवित्र होने के लिए नहीं, परंतु तीर्थ स्थान को पवित्र करने के लिए। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थी तीर्थ मतलब तीर्थ स्थान में करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थानि मतलब तीर्थ स्थानों को, कुर्वन्ति का मतलब है करते हैं। कौन? जो अपना हृदय में गदाभृत गोविंद को, गदाधर को धारण करते हैं। भक्तों के हृदय में भगवान विराजमान है, तो इसलिए भगवान के भक्त भगवान का धाम बन जाते हैं, और उन्होंने तीर्थ स्थान में जाकर तीर्थ स्थान को भी पवित्र बना देते हैं। और इसलिए जब हम तीर्थ स्थान में जाते हैं तो क्या करना चाहिए? तीर्थ स्थान में जाकर भगवान के भक्त को संग करना चाहिए, भगवान के भक्तों को मुखारविंद से भगवान के वाणी श्रवण करना चाहिए। हम देखेंगे कुछ दिन बाद शिवरात्रि होने वाला है, यहाँ क्या होगा? लाखों आदमी आएंगे, कितना भीड़ होगा। बल्कि उन लोगों ने क्यों आएंगे यहाँ? आके महाकालेश्वर मंदिर में जाकर महाकाल को दर्शन करेंगे और शायद शिप्रा नदी में नहाएंगे, बल्कि भगवान की वाणी सुनेंगे। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? वहां जाकर उनको भगवान की वाणी सुनाना चाहिए। इसलिए ही आज हम सुबह बोल रहा था कि वहां ग्रंथ वितरण होना चाहिए। हम तो वो तो सुनेंगे नहीं हमसे, वो बोलेंगे क्या, वो लोग सोचेंगे अरे ये कैसा साधु है, इसका दाढ़ी नहीं है, लंबा बाल नहीं है, ये कैसे साधु है। उनका विचार में जितना लंबा दाढ़ी होगा और बाल जितना, जटा को क्या बोलते हैं, जटा ही बोलते हैं, जितना बाल में जितना जटा होगा वो उतना बड़ा साधु है। बल्कि साधु कौन है, साधु कौन है जो भगवान का शरण लेते हैं, वो साधु है। जो भगवान को शरण नहीं लेते हैं वो साधु नहीं है। और आजकल का साधु का विचार कैसा है, जो साधु के रूप में जो है आप देखिए उन सब का विचार कैसा होता है, उनका विचार है मैं हूं भगवान। तो जो भगवान को शरण न लेकर खुद भगवान बनना चाहता है वो कैसे व्यक्ति है, कौन भगवान बनना चाहता है। वैसे हम जब शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र में हम क्या देखते हैं, कौन भगवान बनना चाहता है। हिरण्यकशिपु भगवान बनना चाहता है ना, और रावण भगवान बनना चाह रहा है। तो जो खुद भगवान बनना चाहता है तो आप विचार कीजिए उसका स्थिति कैसी है, वो क्या साधु है या और कुछ है। पहले एक बार मैं बताया था कि कलियुग में धर्म, कलियुग का स्थिति जो है बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अधर्म, धर्म के नाम में अधर्म का प्रचार होता है, लगता है धर्म बल्कि असल में धर्म नहीं है, वो अधर्म है। क्योंकि ये कलियुग अधर्म का युग है। और अधर्म का मतलब क्या है, जो लगता है धर्म जैसा बल्कि असल में धर्म का विपरीत है। जो ऐसे नास्तिक है उसको हम मान लेते हैं, वो अधार्मिक हम देख ले समझ लेते हैं कि वो तो नास्तिक है। तो अधर्म का प्रतिनिधि नास्तिक नहीं है वैसे, जो अपने आप को नास्तिक के रूप में फैलाते हैं, बल्कि जो लगता है कि वो धर्म का आचरण कर रहे हैं, धार्मिक है, धर्म का आचरण कर रहे हैं, साधु हैं, बल्कि असल में वो धर्म नहीं पालन कर रहे हैं, धर्म का जो विपरीत जो है उसको पालन कर रहे हैं, उसको प्रचार कर रहे हैं, इसलिए वो अधर्म है। तो कलियुग का धर्म क्या है, कलियुग का धर्म, इस कलियुग का धर्म क्या होता है, युग धर्म क्या है कलियुग का, हरिनाम संकीर्तन। तो जो हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं, जो भगवान का वाणी का प्रचार कर रहे हैं, भगवान का महिमा प्रचार कर रहे हैं, वो है धर्म के मार्ग में चलने वाला। और जो उस मार्ग को ग्रहण ना करके और कोई दूसरा मार्ग को प्रचार करता है वो अधर्म का ही प्रचार कर रहा है। ये विचार बहुत सरल है बल्कि सुनने में काफी लोग को अच्छा नहीं लगेगा, वो बोलेंगे इस्कॉन के महाराज ये कैसे बातें कर रहे हैं। बल्कि हम क्या करेंगे, हम तो अपना बातें नहीं कर रहे हैं, हम शास्त्र की बातें कर रहे हैं। और जो बुद्धिमान है वो ये शास्त्र का वाणी को ग्रहण करेंगे। ये विचार हमको सही रूप से समझना चाहिए, अपना कल्याण के लिए इसको समझना चाहिए। आप देखिए इसका एक दृष्टांत हम ऐसे दे सकते हैं, आप हीरा खरीदने के लिए दुकान गए हैं, तो कोई एक कांच को टुकड़ा लेकर आपको पास आकर बताया कि ये देखो ये हीरा है, और देखने लगता भी है, कभी कभी कांच को भी हीरा जैसा लगता है ना, कांच का पीछे अगर कोटिंग होता है, आईना का जैसा कोटिंग होता है, पारा का कोटिंग होता है, तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो वैसे कांच में अगर वैसे पीछे अगर ये लगा देते हैं, क्या बोलता है, मार्करी कोटिंग को हिंदी में क्या बोलता है, पारा का कोटिंग। हाँ, ऐसे शीशा क्या है, शीशा कांच है, बल्कि शीशा में अपना शक्ल हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि शीशा का पीछे वो पारा का कोटिंग देने के कारण वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो वैसे कांच में भी कभी कभी होता है, राधा रानी को बहुत अच्छा पता है, जाते हैं वो भी ज्वेलरी बनाने के लिए, वैसे कुछ कभी कभी लाते हैं खरीद के। और तो ऐसे जो हैं, तो कोई व्यक्ति आकर कुछ कांच दिखा के बोला कि देखो ये हीरा है, ये ले लो, इसका दाम उतना ज्यादा नहीं है। दुकानदार जो हीरा बिकने वाला है वो बहुत, उसका वो बहुत प्रॉफिट कर रहा है, उसका भाव बहुत महंगा है और मेरा बहुत सस्ता है, तुम हमसे ले लो। तो अगर कोई व्यक्ति सोचेगा देखो ये तो बहुत अच्छा हो रहा है और चलो ये खरीद लेते हैं, बल्कि खरीदने के बाद अगर कोई आकर आपको बोला देखो ये तो हीरा नहीं है, ये कांच है, तो मन में कष्ट होगा। देखो आप सोचेंगे कि देखो वो आदमी तो अच्छा लगता था, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत ऑनेस्ट आदमी है, और पैसा भी हमसे देखो कितना कम लिया है, और बाद में ये भी विचार होगा कि मैं क्या इतना अकलमंद हूं कि हमको वो ऐसे धोखा दे दिया। ये भी हम नहीं सहन पाते हैं, सहन करना चाहते हैं, तो इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो वैसे ही अगर कोई आकर बोलेंगे कि आप धर्म के मार्ग में चलना चाहते हो, चलो तुम जो कुछ कर रहे करते रहो और मैं तुमको धर्म के मार्ग दिखा दूंगा। तुम मांस मछली खाते हो कोई बात नहीं, तुम दारू पीते हो कोई बात नहीं, शराब पीते हो, गंजा पीते हो, चरस पीते हो, कभी कभी मेरा अड्डा में मेरा आखड़ा में आ जाना, वहां भी चरस मिलेगा। तो ऐसे लोग प्रचार कर रहे, बहुत बहुत आसानी से, बहुत सरल रूप से, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एकदम मुफ्त में सब कुछ मिल जाएगा। बल्कि जो साधु है वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे देखो तुम धर्म के मार्ग में चलना चाहते हो तो मांस मछली प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तुम धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो शराब पीना, गंजा पीना, अफीम खाना, कि ऐसा कि चाय कॉफी भी छोड़ना होगा, और कोई बुरा काम नहीं करना, कोई असत संग नहीं करना, कोई अवैध संग नहीं करना, और कभी झूठ नहीं बोलना, झूठ मार्ग में भी नहीं रहना, जुआ वगैरह खेलना बिल्कुल छोड़ना। तो जो सही वस्तु जो चाहता है, जो हीरा चाहता है, वो बोलेगा अगर मैं हीरा चाहता हूं तो उसके लिए हमको उसका दाम भी देना पड़ेगा। हीरा का दाम कांच की तरह अगर मिल जाता है तब तो, बल्कि ये बात ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है वो हीरा केवल वो हीरा को सबको दे रहे हैं, बोल रहे ले लो, बल्कि दाम केवल एक ही है, भगवान को शरण लेना होगा। ऐसे आसान हो गए हैं, परंतु जो व्यक्ति भौतिक जगत के प्रति आसक्त रहना चाहते हैं तो उनके लिए मुश्किल होगा, ये मार्ग ग्रहण करना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि भौतिक जगत में रहकर हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। आप दो नाव में पा देकर आगे बढ़ सकते हैं, तो एक और पैर अगर भौतिक जगत में रहा और एक पैर अगर आध्यात्मिक जगत में, हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे? आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमको भौतिक जगत से विदा लेना होगा, अर्थात भौतिक आसक्ति को त्यागना होगा। अगर हम नहीं त्याग करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसका भी एक दृष्टांत ऐसा है कि मैं शायद बताया था, शादी के पार्टी, बारात जा रहा था शादी के लिए, बताया नहीं ओके, बारात जा रहा था, रात को निकला है, बहुत अच्छे से खाना खाकर वो चल गया बहू के घर जहाँ शादी होगा। तो चल, बंगाल में तो बहुत नदियाँ हैं, तो नाव से जा रहा था, तो रात को सब नाव पर चढ़ा और सो गए, खाना कभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया था तो रात को सो गए, सुबह को पहुंचना था, शादी वहाँ होगा, सब सोचा कि रात को सो जाएंगे और सुबह हम वहाँ पहुंच जाएंगे और शादी होगा। तो रात को सब सो गए, बल्कि सुबह जब सब नींद से उठा तो देखा कि नाव एक इंच भी नहीं चला, वो जहाँ था वहाँ ही रह गया। तो वो सब बहुत गुस्सा हुआ, क्रोधित हो गया, जो नाव का जो क्या बोलते हैं नाविक, बंगला में माझी बोलते हैं जो नाव चलाते हैं, ठीक है, नाविक को बोला कि तुम बहुत डांटने लगा उसको, तुम रात भर सोया, और बल्कि नाविक बोला नहीं, हम रात भर नाव चलाते रहा तो पता नहीं है क्या हो गया। तो बाद में सब देखा, वो नाव का जो ये होता है एंकर को क्या बोलते हैं, लंगर, वो लंगर उठाने को भूल गया वो लंगर उठाने को भूल जाने के कारण नाव चलाया बल्कि नाव आगे नहीं बढ़ा। तो हम भी क्या वैसे करेंगे कि लंगर रहेगा भौतिक जगत में और हरे कृष्ण का नाव चलाते रहेंगे, तब हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या करना होगा? सबसे पहले लंगर उठाना होगा, लंगर उठा के तब हमको नाव चलाना होगा। भवद विधा भागवतस तीर्थीभूता स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। आप जैसे संत पुरुष साक्षात तीर्थ हैं, वे अपनी शुद्धता के कारण भगवान के चिरंतन संगी रहे, अतवेव वे तीर्थों को भी शुद्ध कर सकते हैं। इस श्लोक श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का 13 अध्याय का 10 श्लोक है, जिसे महाराज युधिष्ठिर ने विदुर से कह रहा था और जहां आदि लीला में भी आया है, ये आदि लीला में भी चैतन्य चरितामृत का आदि लीला में भी इसका वर्णन हुआ है। भवद विधा भगवता मतलब आप जैसे भागवत, भवद विधा भागवता, आप जैसे महाभागवत, तीर्थ भूता स्वयं विभू, आप साक्षात तीर्थ हैं। क्यों तीर्थ हैं? क्योंकि तीर्थ स्थान में क्या होता, कौन रहता है? भगवान विराजमान है, और भक्त का हृदय में भगवान विराजमान है, तो भक्त भी, भगवान का भक्त भी तीर्थ है। और आप, आपके अपनी शुद्धता के कारण अपना तीर्थ भूता स्वयं विभू, भगवान निरंतर आपके साथ रहते हैं, अतवेव आप तीर्थ को भी शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। वैष्णवेर यही है हय, वैष्णवेर यही हय एक एक स्वभाव निश्चल, देह जीव नहेन हन स्वतंत्र ईश्वर। वैष्णव तीर्थ स्थानों की यात्रा उन्हें पवित्र बनाने तथा पतित बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए करता है, ये वैष्णव का कर्तव्य है। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु जीव नहीं अपितु साक्षात भगवान है, फलस्वरूप वे स्वतंत्र नियंता हैं, फिर भी भक्त रूप में वे भक्तों के सारे कार्य पूरे करते हैं। राजा कहे तारे तुमि जाइते केन दिले, पाए पड़ी जत्न करी कैने ना रहिले। ये सुनकर राजा ने कहा, आपने उन्हें क्यों जाने दिया, आप उनके चरण कमलों पर गिरकर उन्हें क्यों यही नहीं रखा। भट्टाचार्य कहेते हो स्वयं ईश्वर स्वतंत्र, साक्षात श्री कृष्ण ते हो नहे परतंत्र। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और वे पूर्ण स्वतंत्र है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण होने के कारण वे किसी पर आश्रित नहीं है। तथापि राखीते तारे बहु जत्न कोइलु, ईश्वर स्वतंत्र इच्छा राखीते नारीलु। फिर भी मैंने उन्हें रखने के लिए बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे भगवान हैं तथा स्वतंत्र हैं, अतवे मैं इसमें सफल नहीं हो सका। राजा कहे भट्ट तुमि विज्ञ शिरोमणि, तुमि तारे कृष्ण कहो ताते सत्य मानि। राजा ने कहा, हे भट्टाचार्य, मैं जानता हूं कि आप अत्यंत विद्वान तथा अनुभवी व्यक्ति हैं, अतएव जब आप श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण कहते हैं तो मैं इस सत्य को मान लेता हूँ। पुनरपि इहातार होइले आगमन, एक बार देखी करी सफल नयन। श्री चैतन्य महाप्रभु जब पुनः यहाँ आए तो मैं अपने नेत्रों के सफल बनाने के लिए उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ। भट्टाचार्य कहते हो आशिबे अल्प काले, रोहिते तारे एक स्थान चाहिए बिरले। सर्वम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु शीघ्र ही वापस आएंगे, मैं उनके लिए एक उत्तम स्थान चाहता हूँ जो एकांत तथा शांत हो। ठाकुरेर निकट आर होइवे निर्जने, एमत निर्णय करी देहो एक स्थाने। श्री चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान एकांत में हो तथा जगन्नाथ मंदिर के निकट भी। आप इस प्रस्ताव पर विचार करें और उनके लिए एक अच्छा सा स्थान दें। राजा कहे ओइछे काशी मिश्रेर भवन, ठाकुरेर निकट हए परम निर्जन। राजा ने उत्तर दिया, आप जैसा चाहते हैं काशी मिश्र का घर वैसा ही है, वो मंदिर के निकट है और अत्यंत निर्जन तथा शांत भी। এত কহি রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হইয়া, ভট্টাচার্য কাশী মিশ্রে কহিল আসিয়া। ইয়ে কহকর রাজা মহাপ্রভু কি বাপসিকে লিয়ে অত্যন্ত আতুর হয়ে উঠা। তব সার্বভৌম ভট্টাচার্য কাশী মিশ্রকে ঘর রাজা কি ইচ্ছা বতলানে গে। কাশী মিশ্র কহে আমি বড় ভাগ্যবান, মোর গৃহে প্রভুপাদের হবে অবস্থান। जब काशी मिश्र ने ये प्रस्ताव सुना तो उन्होंने कहा, मैं परम भगवान हूँ कि समस्त प्रभुओं के स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे घर पर ठहरेंगे। এই মতো পুরুষোত্তম বাসী যত জন প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত মন। ইস তরহ জগন্নাথ পুরী অর্থাৎ পুরুষোত্তম কে সারে বাসী মহাপ্রভু সে ফির সে ভেট করনে কে লিয়ে পরম উৎসুক থে। সর্বলোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাড়িল মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে তবহি আইল। যব জগন্নাথ পুরীকে সারে নিবাসী ইস প্রকার উৎসুক থে তভি মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত সে লোট আয়ে। শুনি আনন্দিত হইল সবাকার মন সবে আসি সার্বভৌমে কইল নিবেদন। মহাপ্রভু কো বাপস আয়া শুনকর সভি লোক পরম সুখী হুয়ে ওর ওয়ে সভি লোক সার্বভৌম ভট্টাচার্য কে পাশ যাকর ইস প্রকার বলে। প্রভুর সহিত আমা সবার করাহ মিলন তোমার প্রসাদে পাই প্রভুর চরণ। কৃপা করকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সে হামারি ভেট করানে কি ব্যবস্থা কর দে। আপকি কৃপাকে বল পর হি হমে মহাপ্রভু কে চরণ কমলো কে শরণ প্রাপ্ত হো সকতি হ্যায়। ভট্টাচার্য কহে কালী কাশী মিশ্রের ঘরে প্রভু যাইবেন তাহা মিলাব সবরে। ভট্টাচার্য নে লোগো সে কাহা মহাপ্রভু কাল কাশী মিশ্রকে ঘর পর হোঙ্গে তভি মে আপ লোগো কি উনসে মিলনে কি ব্যবস্থা করুঙ্গা। আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্যের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন কইল জগন্নাথ দর্শন কইল মহারঙ্গে। আগলে দিন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আ গে ওর ওয়ে বড়ে হি উৎসাহপূর্বক সার্বভৌম ভট্টাচার্য কে সঙ্গ ভগবান জগন্নাথ কে মন্দির কা দর্শন করনে গে। মহাপ্রভু দিয়া তাহা মিলিলা সবেক সেবক গণ মহাপ্রসাদ দিয়া তাহা মিলিলা সেবক গণ মহাপ্রভু সবাকারে কইল আলিঙ্গন। ভগবান জগন্নাথ কে সবকোণে ভগবান জগন্নাথ কে সেবকোণ চৈতন্য মহাপ্রভু কো ভগবান কা প্রসাদ লা কর দিয়া। তব মহাপ্রভু নে উন সবো কা আলিঙ্গন কিয়া। দর্শন করি মহাপ্রভু চলিলা বাহিরে ভট্টাচার্য আনিল তারে কাশী মিশ্র ঘরে। জগন্নাথ জি কা দর্শন করনে কে বাদ মহাপ্রভু মন্দির সে বাহার আ গয়ে হ্যায়। ফির ভট্টাচার্য নে উন্হে কাশী মিশ্র কে ঘর পর লে গয়ে। কাশী মিশ্র আশি পড়িল প্রভুর চরণে গৃহসহিত আত্মা তারে কইল নিবেদনে। যব শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কাশী মিশ্রকে ঘর আয়ে তো ও তুরন্ত উনকে চরণ কমলো পর গির পড়া ওর উসনে স্বয়ং কো তথা আপনে সারে ঘর বার কো উনকি শরণ মে দে দিয়া। ऐसे ही करना चाहिए। जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को और उसके साथ जो कुछ हमारा है वो सब भी भगवान को निवेदन करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। तब क्या होता है, तब फायदा क्या होता है, फायदा होता है या नुकसान होता है? लगता है तो नुकसान हो जाएगा ना। अपना घर बार सब कुछ अगर भगवान को दे दिया तो हमारा क्या होगा? नहीं, हम जब भगवान को देते हैं तो भगवान उसको 10 गुना 100 गुना 1000 गुना कहकर वापस दे देते हैं। बल्कि ये करने के लिए हमको क्या विश्वास रखना चाहिए कि भगवान है। भगवान है और भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वज्ञ है और भगवान सर्वगा है। सर्वगा अर्थात भगवान हर जगह में है, भगवान सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान देख रहे हैं और भगवान परम ईश्वर है, सब कुछ के मालिक भगवान है। तो जब हम भगवान को कुछ देते हैं तो भगवान देखते हैं, भगवान को पता लगता है कि ये दे रहे हैं। ऐसा नहीं हम भगवान को दिया और मंदिर का पुजारी सब कुछ ले गए। हाँ नहीं, पुजारी लेते हैं बल्कि भगवान के लिए ही लेते हैं, भगवान को निवेदन करने के लिए। भगवान को हम जो कुछ देते हैं भगवान के भक्तों के माध्यम उसको अब समर्पण होता है। और ऐसे जब हम भगवान को देते हैं तो भगवान देखते हैं। आप कोई आपको कुछ कोई व्यक्ति आपको कुछ देता है तो आपका मनोभाव कैसा होता है? आपको मन में आप खुशी होते हैं, उसके प्रति प्रसन्न होते हैं। और आप अगर बहुत अमीर आदमी हैं, बहुत रईस आदमी हैं, तो आपको कुछ दिया और आप उनका प्रसन्न हुआ तो आप क्या बोलेंगे? आप उसको कुछ देंगे। और देखिए सबसे और इसके भी परे, वो व्यक्ति अगर आपको सेवा करना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है, जो कुछ तुम्हारा जरूरत है ले लो, क्योंकि तुम तो अपने आप को समर्पण कर दिया, तुमको जो कुछ था वो हमको दे दिया और फिर से मेरा सेवा में लग गया, तो चलो तुम मेरा सही सेवक हो, असल सेवक हो। इसलिए तुम मेरे सेवा के लिए जो कुछ तुम चाहते हो सब कुछ हम दे देंगे। और भगवान ऐसे सोचते हैं और लक्ष्मी देवी भगवान को मनोभाव को समझकर लक्ष्मी देवी बोलते हैं ठीक है चलो जो भी तुम्हारा लगेगा हम सब दे देंगे तुमको। तो आप बताओ भगवान को से आप भगवान के पास अपने आप को समर्पण करने से क्या लाभ होता है या नुकसान होता है? मैं सुनाई नहीं दे रहा, याद रहेगा? हाँ, ये सबसे पहले ये समझना चाहिए। हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सब कुछ भगवान को समर्पण। हम अपने आप को समर्पण करने के लिए आया, तो अपने आप को समर्पण करने के लिए आया तो समर्पण सही हुआ, सही रूप में हुआ, इसको हम समझेंगे कैसे? मैं अगर आया भगवान को भगवान के पास समर्पण करने के लिए, बल्कि मेरा जितना रुपया था वो सब मेरा जो सजन था उसको दे दिया। ऐसा होता है, कोई आदमी मंदिर आता है, ज्वाइन बोलते हैं कि हम मंदिर ज्वाइन करना चाहता हूं, और क्यों करेंगे? मैं बहुत भगवान को सेवा करना चाहता। ठीक है, तो अपना आपका मकान था? हाँ था। तो मकान किसको दिया? अपना बीवी को और अपना लड़का को दिया है, अपना पत्नी को दिया, उनके नाम में लिख के मैं दे दिया। ठीक है, आपका जो बैंक बैलेंस था कुछ? हाँ था कुछ। वो क्या किया? वो भी अपना बीवी बच्चे को दे दिया। तो भगवान को क्या देने के लिए आए? मैं अपने आप को भगवान को पास देने के लिए आए। क्यों आए हैं? ताकि पता नहीं है वो बच्चा हमको देखेगा या नहीं। तो इसलिए हम मंदिर में आ गया ताकि भगवान हमको देखेंगे। अपने आप को समर्पण का मतलब मेरा जो कुछ है वो सब भी भगवान को समर्पण करना है। हम बोलते हैं ना, समर्पण कैसे होता है? तन मन और धन। तन मतलब शरीर से भगवान को सेवा होगा, मन के द्वारा भगवान का चिंतन होगा, कैसे हम भगवान को सेवा करेंगे इसका विचार होगा, और धन जो कुछ है वो सब भी भगवान के लिए ही हमें अर्पण करना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि बोलते हैं आपका जो आप आए हैं आपके साथ साथ आपको फैमिली को भी युक्त करना है भगवान की सेवा में। अगर फैमिली अगर भगवान की सेवा में नहीं युक्त होता है और आप अगर युक्त होना चाहते हैं तो हमारा विचार क्या है? हमारा विचार बहुत सरल है, तो आपको फैमिली छोड़ के भगवान के पास आना। फैमिली अगर भगवान के सेवा में नहीं लगेंगे तो उसको त्याग देना, इसका जरूरत क्या है? वो ये है माया। फैमिली का जो बंधन है, भौतिक जगत का बंधन जो है वो है माया। तो भगवान की सेवा के लिए क्या माया रहेगा या माया को छोड़ना होगा? जो गृहस्थ आश्रम में है उन लोगों के लिए वो त्यागना नहीं होगा, क्योंकि आप तो गृहस्थ आश्रम में घर में हैं। बल्कि जो मंदिर में आकर रहना चाहते हैं उनके लिए, चाहे तो वो लोग आएंगे, नहीं तो ठीक है चलो तुम अपना राह देखो, मैं अपना राह में चल रहा हूं। अगर ये राह एक नहीं बना तो ये सही राह छोड़कर मैं गलत राह में नहीं जाने वाला। ये सही विचार है ना? ना क्या मैं आज बहुत कुछ हेवी बोल रहा हूं? मैं क्या मन में कष्ट हो रहा है क्या? ठीक है, ये ही है भक्ति के मार्ग। जब भगवान को हम शरण लेते हैं, बस भगवान को ही हम शरण लेंगे। अगर कोई नहीं हमारे साथ चलेंगे, हमारे राह ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमको बोलना होगा देखो अगर तुम नहीं ले रहे हो तो चलो तुम अपना राह में चलो और हमें इस राह में चलने दो। तो ऐसे काशी मिश्र के घर जब महाप्रभु ने गया तो काशी मिश्र का मनोभाव कैसा हुआ था? मेरा घर, मेरा आत्मा, सब कुछ मैं आपको समर्पण कर रहा हूं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र के घर आए तो वह तुरंत उनके चरण कमलों पर गिर पड़ा और उसने स्वयं को तथा अपने सारे घर बार को उनकी शरण में दे दिया। प्रभु चतुर्भुज मूर्ति तारे देखाइल, आत्मसात करी तारे आलिंगन कइल। तब चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? तब महाप्रभु ने काशी मिश्र को अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया। महाप्रभु ने उसकी सेवा को स्वीकार की और उसे गले लगाया। तबे महाप्रभु ताहा बसिले आसने, चौदिके बसिला नित्ता नंदादि भक्तगणे। तब महाप्रभु अपने लिए तैयार किए गए आसन पर बैठ गए और नित्यानंद प्रभु समेत सारे भक्तगण उनके चारों ओर बैठ गए। सुखी होइला देखी प्रभु बासार संस्थान, जेई बासाय हय प्रभुर सर्व समाधान। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने रिहायशी मकान को देखकर अत्यंत सुखी हुए। उसमें उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का ध्यान रखा गया था। सार्वभौम कहे प्रभु योग्य तुमार बासा, तुम अंगीकार करो काशी मिश्रेर आशा। सार्वम भट्टाचार्य ने कहा, ये स्थान आपके अनुकूल है, कृपया इसे स्वीकार करें। अब आप काशी मिश्र की आशा को पूरा करें। प्रभु कहे यही देहो तोमा सबाकार, जेई तुमि कहो से सम्मतोय आमार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये मेरा शरीर आप सबों का है, अतएव आप लोग जो भी कहेंगे वो मुझे स्वीकार है। तबे सार्वभौम प्रभुर दक्षिण पार्श्वे बसी, मिलाइते लागिला सब पुरुषोत्तम बासी। इसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के दाहिने बैठकर पुरुषोत्तम अर्थात जगन्नाथ पुरी के सारे निवासियों का परिचय कराने लगे। आज हम यहां तक ही पाठ रखते हैं। हरे कृष्णा श्री चैतन्य चरितामृत की गौर प्रेमानंदे। कई प्रश्न है किसी को? मालिनी,
जो फैमिली जो है वो भक्त है और है एक जो वो मंदिर में है एक जन और फैमिली और सब भक्त है लेकिन घर में रहता है, मंदिर में नहीं रहता, लेकिन वो लोग बोलता है कि आप घर में चलाओ।
ये क्या तुम्हारा अपना बात मित्रविंद? ओ अच्छा, मंदिर नहीं बोल रहे, अपना आदमी बोल रहे हैं। तो अगर मित्रविंद को अपने घर उनको देखना था तो शादी क्यों दिया? लड़की का शादी के बाद लड़की को अपना पति के साथ रहना है। अगर पिता का घर में लड़की का घर में रहेगा तो उसको घर जमाई बोलता है, घर दामाद। उसका क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए थे, घर में कौन था? माता था और पत्नी थे, पत्नी थी। माता और पत्नी को छोड़कर महाप्रभु सन्यास लिया। प्रभुपद बताया इसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा दे रहे हैं कि अगर तुम भगवान को सेवा में जा लग रहे हो, भगवान की सेवा के लिए जा रहे हो, तो अपना स्वजनों के बारे में, पिता माता के पत्नी के बारे में सोचना नहीं होगा, भगवान देखेंगे। और असल बात तो ये है, देखो हमारे स्वजनों साथ रहकर क्या हमारा हमको उद्धार कर सकते हैं? मृत्यु रोक सकता है, बुढ़ापा रोक सकता है? तो परंतु अगर जो भगवान को सेवा में लग जाते हैं उसका जन्म सफल हो जाता है। कौन देखेंगे, सबको कौन देख रहा है? भगवान देख रहा है। फिर भी मैं मित्रविंद को बोला है यू डिसाइड, अगर घर में रहना चाहते हो ठीक है, पिता माता के साथ रहना चाहते हो। बल्कि सही विचार ये है कि जो भगवान को सेवा में लगे हैं उनको और किसी विषय में सोचना नहीं चाहिए, भगवान को सेवा में ही युक्त रहना चाहिए। तो अब मैं तुमको पूछ सकता हूं, तो तुम्हारा तो हाँ पति और बच्चा घर में है, तो तुम क्यों छोड़ के आए हो? सही बात है, हमें कहाँ रहना चाहिए? जहाँ आनंद है, जहाँ आनंद मिलता है। तो यहाँ अगर आनंद मिल रहा है, वहां से अधिक आनंद अगर यहाँ मिल रहा है तो यहाँ ही रहना चाहिए। वेरी गुड, यू मेड द राइट डिसीजन। और कौन हाथ उठाया था? आएगा बाद में आएगा। और कौन कोई प्रश्न है किसी को? ओके थैंक यू। ओ पारुल हाँ धन सबके पास ही है, धन तो केवल संपदा ही नहीं, ऐसे भौतिक संपदा ही नहीं, अपना गुण जो है वो धन है, अपना कार्य करने का जो क्षमता है वो भी धन है। मतलब तुम और तुम्हारे साथ जो कुछ है सब भगवान को ही अर्पण करना। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे।